एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
ईरान का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? मतलब अक्सर कुछ उलझी हुई राजनीतिक खबरें,
परमाणु कार्यक्रम पर बहस,
हाँ, या फिर कुछ सख्त पाबंदियों की तस्वीरें। पर क्या ये पूरी कहानी है?
नहीं, बिल्कुल नहीं।
आज हम एक ऐसे देश की परतों को खोलने की कोशिश कर रहे हैं जो हजारों साल पुरानी सभ्यता और आज की दुनिया की सच्चाइयों के बीच अपनी पहचान और अपनी जगह तलाश रहा है।
बिल्कुल। और इस पहेली को समझने के लिए हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन गाइड है, अली एम अंसारी की ईरान पर लिखी गई किताबें।
अच्छा।
आज हम इन स्रोतों के जरिए ईरान के उस जटिल तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे जो अक्सर हेडलाइंस के पीछे, आप कह सकते हैं, छिप जाती है।
तो हमारा मकसद ईरान को सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दे की तरह नहीं
बल्कि एक गहरी जीती जागती सभ्यता के रूप में देखना है और ये समझना है कि ईरान वो वैसा क्यों है जैसा वो आज है।
तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये अली एम अंसारी हैं कौन, क्योंकि उनकी अपनी कहानी ही है ना उन्हें इस विषय पर लिखने के लिए एक अनोखा नजरिया देती है।
हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। अंसारी कोई आम इतिहासकार नहीं है। उनके पिता एक ईरानी राजनयिक थे और उनकी परवरिश और पढ़ाई लिखाई वो ब्रिटेन में हुई।
अच्छा, तो मतलब एक पैर ईरान में और दूसरा पश्चिम में।
ठीक यही, तो उनके पास एक तरह की डबल विजन है, हम कह सकते हैं। वो ईरानी संस्कृति को अंदर से समझती हैं, उसकी बारीकियों को जानती हैं। लेकिन साथ ही उनके पास बाहर से एक एक्सपर्ट की तरह चीजों को एनालाइज करने की नजर भी है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ना तो ईरान को किसी पश्चिमी चश्मे से एक खलनायक की तरह देखते हैं और ना ही एक ईरानी की तरह उसकी हर बात का बचाव करते हैं।
बिल्कुल, वो एक संतुलित तस्वीर पेश करते हैं। वो ईरान की कहानी को न तो पूरी तरह अच्छा बताते हैं न बुरा, वो बस ये समझाते हैं कि ये इतना जटिल क्यों है।
और वो ये भी कहते हैं कि ईरान की असली कहानी 1979 की क्रांति से शुरू नहीं होती।
हाँ, वो कहते हैं कि ये कहानी 2500 साल पहले फारसी साम्राज्य की जड़ों तक जाती है।
और यहीं पर अंसारी का सबसे बड़ा तर्क सामने आता है ना, कि ईरान को समझने के लिए हमें आज की राजनीति से कहीं ज्यादा गहरे उतरना होगा, उसके इतिहास के समंदर में।
बिल्कुल। किताब का सबसे अहम आइडिया यही है कि ईरान दशकों में नहीं, वो सदियों और सहस्राब्दियों में सोचता है।
अच्छा। उनका मानना है कि ईरान के डीएनए में उसका 2500 साल पुराना इतिहास बसा हुआ है और यही ऐतिहासिक चेतना उसे अपने अरब पड़ोसियों से बिल्कुल अलग बनाती है।
ये बात सोचना ही कितना अलग है, मतलब जब पश्चिमी देश अगले चुनाव या तिमाही नतीजों के बारे में सोच रहे होते हैं।
हाँ, और जब ईरानी नेता शायद 500 साल पहले की किसी संधि या 2000 साल पुराने किसी जीत के बारे में सोच रहे होते हैं, ये तो बातचीत के नियम ही बदल देता है।
और यही वो बुनियाद है जिस पर ईरान की आज की पहचान और राजनीति टिकी है। अंसारी दिखाते हैं कि ईरान के अंदर हमेशा से कुछ तनाव, कुछ खिंचाव चलते रहते हैं।
जैसे
परंपरा और आधुनिकता के बीच, फारसी राष्ट्रवाद और इस्लामी पहचान के बीच, और एक सख्त सरकार और एक जिंदा दिल जागरूक समाज के बीच।
तो चलिए इसी बुनियाद में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। अंसारी इतिहास के बोझ की बात करते हैं। उनका कहना है कि 7वीं सदी में अरबों ने ईरान को जीत लिया और वहां इस्लाम आया, लेकिन ईरान कभी पूरी तरह अरब नहीं बना। ये कैसे हुआ?
ये बहुत ही दिलचस्प है। अरबों की जीत के बाद भी फारसी संस्कृति वो मिटी नहीं, बल्कि उसने इस्लाम को एक नया, एक फारसी रंग दे दिया।
अच्छा।
इसका सबसे बड़ा उदाहरण है फिरदौसी का लिखा महाकाव्य शाहनामा, यानी राजाओं की किताब।
हाँ, सुना इसके बारे में।
ये किताब इस्लाम आने के कई 100 साल बाद लिखी गई, लेकिन इसमें इस्लाम से पहले के फारसी राजाओं और नायकों की कहानियां हैं।
तो एक तरह से उन्होंने इस्लाम को अपनाते हुए भी अपनी पुरानी पहचान को जिंदा रखा।
जैसे
उन्होंने इस्लाम को तो अपना लिया, लेकिन उसे अपनी शर्तों पर, अपनी संस्कृति के धागों से बुनकर।
बिल्कुल सही। शाहनामा ने फारसी भाषा को जिंदा रखा और ईरानियों को ये याद दिलाया कि उनकी पहचान इस्लाम से भी पुरानी है। यही वजह है कि आज भी ईरान में राष्ट्रवाद की भावना बहुत गहरी है और ये जो अपनी पहचान को बचाने की कोशिश थी वो सिर्फ संस्कृति तक ही सीमित नहीं रही।
आप 1906 की संवैधानिक क्रांति की तरफ इशारा कर रही हैं।
हाँ।
एक मिनट, तो आप कह रही हैं कि 100 साल से भी पहले ईरान में संसद और संविधान के लिए एक बड़ा आंदोलन हुआ था?
बिल्कुल।
ये तो उस छवि से बिल्कुल अलग है जो आज हमारे मन में है। तो फिर हुआ क्या? ये सपना ये पूरा क्यों नहीं हुआ?
यही को इरानीती अहान की कहानी एक दुखद मोड़ है। 1906 की क्रांति वो ईरान की राजनीति को आधुनिक बनाने की पहली बड़ी कोशिश थी।
अच्छा,
लोगों ने राजा की तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाई
और संविधान की मांग की।
हाँ, और एक संसद की भी। लेकिन ये क्रांति सफल नहीं हो पाई और इसकी एक बड़ी वजह थी विदेशी हस्तक्षेप।
अच्छा,
रूस और ब्रिटेन ने ईरान को अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में बांट लिया और इस आंदोलन को कमजोर कर दिया।
और यहीं से उस गहरे शक की शुरुआत हुई जो ईरान आज भी बाहरी ताकतों पर करता है।
हाँ, यहीं से वो डर बैठ गया कि बाहरी ताकतें कभी ईरान को अपने पैरों पर खड़ा नहीं होने देंगी। इस अधूरे सपने के बाद मंच पर आते हैं पहलवी शाह, पहले रेजा शाह।
वो एक फौजी थे जिन्होंने सत्ता पर कब्जा किया।
हाँ, वो ईरान को जबरदस्ती आधुनिक बनाना चाहते थे। उन्होंने एक मॉडर्न सेना बनाई, सड़कें बनवाई, लेकिन साथ ही लोगों पर पश्चिमी कपड़े पहनने और महिलाओं पर पर्दा हटाने के लिए जोर डाला।
और उनके बेटे मोहम्मद रेजा शाह ने इसी काम को और तेजी से आगे बढ़ाया।
बिल्कुल,
खासकर जब ईरान को तेल से बेतहाशा पासा मिलने लगा।
हाँ, और यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास है। शाह की सफेद क्रांति ने ईरान को आधुनिक बनाने की कोशिश की। उन्होंने जमीन सुधार किए, महिलाओं को वोट का अधिकार दिया, शिक्षा फैलाई, पर अनजाने में उन्होंने उन्हीं लोगों को ताकत दे दी जो बाद में उनके खिलाफ हो गए।
ये कैसे? ये तो सुनने में बहुत अजीब लगता है।
सोचिए, उन्होंने एक ऐसी पढ़ी लिखी शहरी पीढ़ी तैयार कर दी जो ज्यादा आजादी और राजनीतिक अधिकार चाहती थी।
सही।
लेकिन शाह किसी भी तरह का विरोध बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे। तो एक तरफ वो समाज को आधुनिक बना रहे थे और दूसरी तरफ राजनीति को बंद रख रहे थे।
तो एक तरह से उन्होंने अपने ही तख्ता पलट की जमीन तैयार कर दी,
कह सकते हैं। और इस माहौल में 1953 का तख्ता पलट एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुआ,
जब लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्देक को हटा दिया गया।
वो एक निर्णायक घटना थी। मोसद्देक ने ईरान के तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया था, जिसे तब तक ब्रिटेन नियंत्रित करता था।
और अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर,
हाँ, उन्होंने मिलकर CIA की मदद से उनकी सरकार गिरा दी और शाह को वापस पूरी ताकत सौंप दी।
अंसारी कहते हैं कि इस घटना ने ईरान के लिए एक शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक रास्ते की संभावना को शायद हमेशा के लिए खत्म कर दिया,
और इसने अमेरिका के खिलाफ नफरत का वो बीज बोया जो 1979 की क्रांति में एक बड़ा पेड़ बन गया।
बिल्कुल, 1979 की क्रांति सिर्फ शाह या अमेरिका के खिलाफ नहीं थी, वो कई अलग अलग गुटों का एक गठबंधन था।
अच्छा,
उसमें इस्लामी कट्टरपंथी थे, मार्क्सवादी थे, उदारवादी थे, राष्ट्रवादी थे। उन सब का बस एक ही मकसद था, शाह को हटाना।
और फिर?
लेकिन क्रांति के बाद अयातुल्ला खुमैनी ने बड़ी चलाकी से बाकी सबको किनारे लगाकर सत्ता पर कब्जा कर लिया।
और उन्होंने
वो विलायत फकीह का सिद्धांत दिया।
हाँ, विलायत फकीह यानी इस्लामी विद्वान का शासन। ये एक बिल्कुल नई तरह की व्यवस्था थी, है ना?
हाँ, एक हाइब्रिड सिस्टम जैसा।
बिल्कुल, इसमें लोकतंत्र के कुछ तत्व थे जैसे चुनाव और संसद, लेकिन अंतिम अधिकार एक गैर निर्वाचित धार्मिक नेता यानी सर्वोच्च नेता के हाथ में था।
और जैसे ही ये नई व्यवस्था बनी, उस पे सबसे बड़ी चुनौती आ गई,
इराक के साथ 8 साल लंबा युद्ध।
तो ईरान इराक युद्ध ने इस नए शासन पर क्या असर डाला?
उस युद्ध ने शासन को कमजोर करने के बजाय और मजबूत कर दिया। उसने पूरे समाज का सैन्यकरण कर दिया और शहादत की एक नई संस्कृति को जन्म दिया।
अच्छा,
युद्ध के नाम पर सरकार किसी भी तरह के विरोध को कुचल सकती थी। आज के ईरान के कई बड़े नेता जैसे रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर, वो सब इसी युद्ध के प्रोडक्ट हैं।
मतलब उनकी सोच आज भी उसी दौर से प्रभावित है,
बहुत ज्यादा।
ठीक है, तो अगर हम इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा को देखें तो कुछ खास पैटर्न या थीम उभर कर आते हैं। ऐसा लगता है कि पहली थीम तो यही है, इतिहास का गहरा असर।
हाँ, पहला सबक यही है कि ईरान के लिए इतिहास कभी मरता नहीं, वो हमेशा मौजूद रहता है।
और दूसरी थीम, विदेशी हस्तक्षेप का डर।
बिल्कुल, इसे ऐसे समझिए जैसे किसी के घर में बार बार चोरी हुई हो, कुछ समय बाद वो हर आहट पर चौंकने लगता है
और दरवाजे पर 10 ताले लगा देता है।
सही, 1953 के तख्ता पलट जैसी घटनाओं के बाद ईरान की विदेश नीति में वो 10 ताले आज भी लगे हुए हैं।
इसीलिए उनका परमाणु कार्यक्रम उनके लिए सिर्फ एक हथियार का सवाल नहीं है,
नहीं,
बल्कि राष्ट्रीय स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है
कि हम किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे।
बिल्कुल, तीसरी बड़ी थीम है सरकार और समाज के बीच की लगातार चलने वाली खींचतान।
ये खींचतान जमीन पर दिखती है।
हाँ, एक तरफ सरकार के सख्त नियम हैं और दूसरी तरफ इंस्टाग्राम पर ईरानी युवा हैं जो ग्लोबल ट्रेंड्स फॉलो कर रहे हैं, या वो महिला उद्यमी हैं जो हिजाब पहनकर भी अपना स्टार्टअप चला रही हैं।
अंसारी इस बात पर जोर देती हैं कि ये सिर्फ खुला विरोध नहीं है, बल्कि एक तरह का रोजमर्रा का प्रतिरोध है, जहां लोग नियमों के दायरे में रहते हुए भी अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी रहे हैं।
ये तो सच में चौंकाने वाली बात है। मतलब एक तरफ क्रांति के बाद महिलाओं पर पाबंदियां लगाई गईं, और दूसरी तरफ अंसारी बताते हैं कि उनकी शिक्षा और यूनिवर्सिटी में उनकी भागीदारी में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। ये विरोधाभास कैसे काम करता है?
यही ईरान की सबसे बड़ी पहेली है, और चौथी थीम इसी से जुड़ी है, विचारधारा के पर्दे के पीछे छिपा हुआ यथार्थवाद, मतलब रियलिज्म।
अच्छा।
ईरानी शासन की भाषा भले ही क्रांतिकारी और आदर्शवादी हो, लेकिन उनकी नीतियां अक्सर राष्ट्रीय हित और सत्ता बचाने की व्यवहारिक सोच पर आधारित होती हैं।
कोई उदाहरण?
जैसे युद्ध के अंत में खुमैनी का इराक के साथ युद्ध विराम स्वीकार करना, जिसे उन्होंने खुद जहर का प्याला पीना कहा था। ये दिखाता है कि जरूरत पड़ने पर वे विचारधारा से हटकर भी फैसले ले सकते हैं।
जानते हैं, इस पूरी चर्चा के दौरान अंसारी की कुछ विचार दिमाग में अटक गए हैं। जैसे वो कहते हैं, ईरान दशकों में नहीं सहस्राब्दियों में सोचता है। ये एक लाइन ईरान की पूरी विदेश नीतियों और उनके धैर्य को समझा देती है।
एक और बहुत शक्तिशाली विचार है, 1979 की क्रांति जितनी इस्लामी शासन के बारे में थी, उतनी ही ईरानी स्वतंत्रता के बारे में भी थी।
सही बात है।
ये हमें याद दिलाता है कि ये सिर्फ धर्म की लड़ाई नहीं थी, ये विदेशी नियंत्रण से आज़ादी की एक गहरी राष्ट्रीय इच्छा भी थी, जिसने अलग अलग विचारधारा के लोगों को एक साथ खड़ा कर दिया था।
बिल्कुल, मुझे उनकी ये तुलना भी बहुत पसंद आई। फारसी संस्कृति ईरानी पहचान का गहरा व्याकरण है, जबकि इस्लाम उसकी समकालीन शब्दावली प्रदान करता है। क्या बेहतरीन तरीका समझाने का।
हाँ, बहुत अच्छा। मतलब वाक्य बनाने के जो मूल नियम हैं, जो ढांचा है, वो आज भी फारसी है, भले ही आज उसमें इस्तेमाल होने वाले बहुत से शब्द इस्लामी हों।
सही।
और आखिर में ये विचार जो उनकी विदेश नीति की आत्मा को पकड़ता है। ईरान की विदेश नीति केवल रणनीतिक हितों को ही नहीं, बल्कि ऐतिहासिक अन्याय की गहरी भावना को भी दर्शाती है।
मतलब जब वो अमेरिका या पश्चिम से बात करते हैं, तो वो सिर्फ आज की डील पर बात नहीं कर रहे होते।
नहीं, उनके दिमाग में 1953 का तख्ता पलट, युद्ध के दौरान मिला धोखा और सदियों का विदेशी हस्तक्षेप सब होता है।
तो इस सारी जानकारी का हमारे लिए क्या मतलब है? जो लोग दुनिया की राजनीति को समझते हैं, उनके लिए इसका क्या सबक है?
सबसे बड़ा सबक ये है कि ईरान के साथ सिर्फ दबाव और धमकी की भाषा काम नहीं करेगी। उसके इतिहास, उसके गौरव और उसके जख्मों को समझना होगा। अंसारी का काम दिखाता है कि जब भी बातचीत सम्मान और बराबरी के स्तर पर हुई है, जैसे 2015 के परमाणु समझौते के दौरान, तो नतीजे निकले हैं।
और मीडिया के लिए भी एक बड़ा सबक है।
हाँ,
ईरान को सिर्फ कट्टरपंथी मौलवियों और राजनीतिक नारों तक सीमित कर देना बहुत बड़ी गलती है।
अंसारी हमें याद दिलाते हैं कि ईरान की सरकार और ईरान के लोग एक ही चीज नहीं है।
सही बात है। वहाँ एक बहुत जीवंत, कलात्मक और जटिल समाज है, जो अक्सर सुर्खियों से गायब रहता है।
बिल्कुल।
और एक आम इंसान के लिए ये समझ हमें खबरों के पीछे की कहानी देखने में मदद करती है।
हाँ।
जब हम ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में सुनते हैं, तो हम सिर्फ एक संभावित खतरे के बारे में नहीं, बल्कि एक राष्ट्र के आत्मसम्मान और अपनी किस्मत खुद लिखने की लड़ाई के बारे में भी सोच सकते हैं।
और ये हमें किसी भी देश के बारे में एक तरफा राय बनाने से रोकता है।
इस पूरी चर्चा में मेरे लिए सबसे हैरान करने वाली बात ईरान के अंदर के विरोधाभास हैं। एक तरफ सरकार की सख्त पाबंदियां और दूसरी तरफ देश की 70% से ज्यादा आबादी 35 साल से कम उम्र की है, जो इंटरनेट और सैटेलाइट टीवी के जरिए पूरी दुनिया से जुड़ी है। ये तनाव ये एक दिन क्या रूप लेगा, ये सोचना ही फैसिनेट करता है।
और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण सीख ये है कि ईरान की पहचान कितनी बहुस्तरीय है। उसे सिर्फ इस्लामी गणराज्य का लेबल देना, वो उसकी हजारों साल पुरानी फारसी विरासत को नज़रअंदाज करना है।
सही।
अंसारी ये साबित करती हैं कि ईरान में राष्ट्रवाद की भावना शायद धर्म से भी ज़्यादा गहरी और मजबूत है। उनकी पहचान का आधार उनका फारसी होना है, जो इस्लाम से भी पहले का है।
तो आज की इस चर्चा के बाद एक बड़ा सवाल सोचने के लिए रह जाता है। जब एक देश का समाज इतनी तेजी से बदल रहा हो, उसकी युवा पीढ़ी की दुनिया देखने का नजरिया और उनकी आकांक्षाएं बिल्कुल अलग हों, लेकिन उसकी राजनीतिक व्यवस्था उतनी ही कठोर और स्थिर हो, तो भविष्य में इन दोनों ताकतों के बीच टकराव होगा या कोई नया रास्ता निकलेगा। ईरान का भविष्य शायद इसी सवाल के जवाब में छिपा है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।